पावन पुण्य सवेरा
ओम शांति। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के इस माउंट आबू पर्वत की तलैटी के इस सुंदर परिसर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सभी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में आए हैं और जिस स्थान पर आए हैं उसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आप सबने दुनिया में अनेक प्रकार के विद्यालय देखे होंगे। भारत में बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो उन विद्यालयों में हम कृषि से संबंधित बातें करते हैं, शोध करते हैं, उनकी जानकारी देते हैं। बहुत सारे लॉ कॉलेजेज जिनमें कानून की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेज हैं, तो उनमें औषधि विज्ञान, शरीर विज्ञान पढ़ाया जाता है। बहुत सारे आर्ट कॉलेजेज हैं और आजकल तो बिजनेस के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशन खुल गई हैं। लेकिन ये जो विद्यालय है इसका नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब ईश्वरीय विश्वविद्यालय अर्थात जहाँ ईश्वर की बातें बताई जाएं, ईश्वर की पढ़ाई पढ़ाई जाए, ईश्वर का सत्य परिचय दिया जाए और ईश्वर से भी पहले स्वयं का परिचय दिया जाए, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय या आध्यात्मिक विश्वविद्यालय दोनों नाम है इसके। तो अध्यात्म एक बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। जैसे हम और भिन्न भिन्न सब्जेक्ट अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र में अर्थ का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी में, जूलॉजी में, जो जो उनके विषय हैं उनका अध्ययन करते हैं, इसी प्रकार अध्यात्म में आत्मा का अध्ययन करते हैं। हम सब कौन है, आत्मा किस चीज का नाम है। सारा दिन में आत्मा शब्द तो बहुत बार यूज करते हैं ना, मेरी आत्मा को मत दुखाओ, मेरी आत्मा को ये अच्छा नहीं लगता, मेरी आत्मा को चोट लगी, मेरी आत्मा बड़ी दुखी हुई, मेरी आत्मा इस बात को मानती ही नहीं है। तो शब्द है तो जरूर उस चीज का अस्तित्व भी होगा। तो वो क्या चीज है, कैसा उसका रंग रूप है, कहाँ वो रहती है, क्या वो करती है, कितनी उसमें शक्तियाँ हैं, इस शरीर में वो कहाँ अवस्थित है, आती कहाँ से है, क्या उसको पकड़ा जा सकता है, छुआ जा सकता है, उसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ईश्वर के साथ उसका क्या संबंध है, एक आत्मा का दूसरे आत्मा से क्या संबंध है, आत्मा के अंदर किस प्रकार की शक्तियाँ हैं। बहुत विस्तृत क्षेत्र है ये अध्ययन का। तो एक तो आत्मा का अध्ययन और दूसरा आत्मा के पिता परमात्मा का अध्ययन, ये भी शिक्षा का एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हमने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े लेकिन जो मूल है उस मूल सब्जेक्ट को पढ़े बिना बाकी सारे सब्जेक्ट भी क्या हो जाते हैं। जैसे वो दिखाते हैं कि एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, उसकी 7 स्टोरीज, लेकिन उसको नींव नहीं है। तो क्या हुआ, एक जोर से तूफान आया तो क्या हुआ उस 7 स्टोरीज की बिल्डिंग का, गिर गई। क्या नहीं था उसके नीचे, नींव नहीं थी। तो नींव तो चाहिए ना, और नींव की खासियत क्या होती है, कहती हैं एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी से किसी ने सवाल पूछा कि आप इतने गुप्त क्यों रहते हैं, आप इतने बड़े हैं, थोड़ा तो अपना शो कीजिए ना, थोड़ा कपड़े अच्छे पहनिए, थोड़ा अपना थोड़ा दिखाइए ना अपना जलवा। तो उन्होंने कहा, मेरे एक राजनीतिक गुरु हुए बाल गंगाधर तिलक। तो एक बार उन्होंने मुझे एक शिक्षा दी थी, जिसके कारण मैं इतना सीधा साधा गुप्त रहता हूँ। तो बोला क्या थी वह शिक्षा, क्या थी वो शिक्षा? तो कहा उन्होंने मुझे कहा, लाल बहादुर शास्त्री तूने कभी ताजमहल देखा है? मैंने कहा हाँ देखा है। तो बोला देखो उसमें दो प्रकार के पत्थर लगे हुए हैं, एक तो है संगमरमर वाले पत्थर जिनको देख करके लोग कहते हैं वाह क्या पत्थर है, क्या चिकनाहट है, हाथ लगा के देखते महिमा करते हैं, संगमरमरी पत्थरों का एक शाहकार महिमा भी करते हैं तो भी उन्हीं का नाम लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खुरदुरे पत्थर भी हैं जो उस ताजमहल की नींव में पड़े हुए हैं, ना किसी को दिखते हैं, ना कोई उनकी महिमा करता है, ना उनका कभी जिक्र आता है, लेकिन वो संगमरमरी पत्थर खड़े किसके ऊपर है? उन्हीं खुरदुरे पत्थरों के ऊपर खड़े हुए हैं, नाम तो उनका कभी भी नहीं आता। तो ताजमहल की असली ताकत वो खुरदुरे पत्थर है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा आप ठीक कहते हो, मनुष्य की असली ताकत उसके गुप्त मूल्य होते हैं, उसकी गुप्त धारणाएं होती हैं, उसके भीतर जो त्याग होता है वो होता है, और अगर वो ना हो तो ऊपरी ऊपरी चीज क्या होती है, एक हवा का झोंका आया और गई। तो बोला मैंने ये वाला पाठ सीखा। तो शिक्षा की नींव क्या है? इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मंजिल की भारत में इतनी इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, इतना सब कुछ है, लेकिन नींव क्या है उसकी? उसकी नींव मूल्य स्वयं का ज्ञान, स्वयं की पहचान, स्वयं को जानना, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ परिवर्तन होना चाहिए, मुझे क्या सीखना चाहिए, है मुझे किधर मुड़ जाना चाहिए, मुझे कौन सी दिशा अडॉप्ट करनी चाहिए, ये है स्वयं का ज्ञान। तो इस नींव के बिना क्या होगा? इस नींव के बिना वो जो ऊपर की स्टोरीज है ना, उनका अस्तित्व हमेशा खतरे में रहता है। कुछ समय पहले की बात है, मैंने अखबार में एक न्यूज पढ़ी थी, कुछ समय पहले की बात कह रही हूँ, आजकल भी बहुत सारी न्यूज आती रहती हैं, लेकिन आजकल की न्यूज मुझे ध्यान में नहीं है, वो न्यूज मुझे ध्यान में है इसलिए मैं उसी का जिक्र कर रही हूँ। न्यूज इस प्रकार थी कि एक जगह कुछ बच्चे एक हॉस्टल में रहते थे और छोटे छोटे बच्चे थे, पेरेंट्स ने छोड़ा हुआ था, लेकिन एक दिन वो बच्चे किसी ने अगवा कर लिए। छानबीन की गई कि अगवा करने वालों में कौन, किडनैप कर लिए, भगा लिए, अगवा कर लिए, छानबीन की गई कि ये काम किसने किया, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे उनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं, किसी बड़े आदमी को कोई करे तो कहेंगे भाई इसने कुछ किया होगा, बच्चों ने क्या किया। तो छानबीन के बाद मालूम पड़ा कि एक आईएएस ऑफिसर का उसमें हाथ था। तो जब न्यूज पढ़ी तो एकदम विचार प्रवाह अंदर में आया। क्या विचार प्रवाह अंदर में आया? कि बहुत मेहनत करके आदमी आईएएस बनता है, माँ बाप को बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, समय भी बहुत लगता है, और पता नहीं कहाँ कहाँ की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, रात दिन जागता है, और इतनी हार्ड कंपटीशन होती है, तब जा करके हजारों में से कोई दो चार लोग सेलेक्ट होते हैं। बड़ी ऊंची पोस्ट है ये, भारत की तो सबसे ऊंची पोस्ट है ये, और ये पोस्ट अगर किसी को मिल जाए तो उसका सार्वजनिक अभिनंदन होता है, लोग गले में फूल मालाएं डालते हैं, कहते हैं तेरा तो जन्म धन्य हो गया। इतनी महिमा तो एक मिनिस्टर की भी नहीं होती है, क्योंकि वो तो इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है, भले वो अनपढ़ भी हो तो भी चुन लिया जाता है, लेकिन वो तो अपनी कड़ी मेहनत करके इस पद को प्राप्त करता है, बहुत बेचारे की आंखों पे इतना मोटा चश्मा चढ़ जाता है। तो मन में चिंतन चला कि उस व्यक्ति ने कितना पढ़ा होगा, जितना उसके पास ज्ञान है शायद ही किसी के पास हो, और उसके बाद कितनी ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद फिर कितना उनको गुप्त रहने की शिक्षा दी जाती है। लेकिन एक दया भावना पैदा हुई कि इस व्यक्ति ने इतना कुछ पढ़ा, लेकिन एक चीज मिस हो गई पढ़ने में। क्या चीज मिस हो गई पढ़ने में? इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ी, अर्थशास्त्र पढ़ा, बहुत कुछ, क्योंकि उस परीक्षा में तो कहीं से भी सवाल आ जाता है, कोई सब्जेक्ट लिमिटेड नहीं होते हैं। इतना कुछ पढ़ा लेकिन क्या छूट गया? क्या छूट गया? स्वयं को नहीं पहचाना, मूल्यों को नहीं पहचाना, समाज के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं पहचाना, उस दया और रहम को नहीं पहचाना जिस दया और रहम के बलबूते पर हम किसी का भला कर सकते हैं। तो हम इतनी ऊंची ऊंची डिग्री लेते हैं, शिक्षा पर इतना खर्च करते हैं, लेकिन एक ढाई अक्षर प्रेम वो हम नहीं अपने अंदर उलेंड पाते हैं, तो परिणाम क्या निकलता है? हम सोसाइटी को वो नहीं दे पाते हैं जो हमें देना चाहिए था, हम अपने परिवार को वो नहीं दे पाते हैं जो हमें देना चाहिए था। तो शिक्षा में प्रेम चाहिए, करुणा चाहिए, सिंपैथी चाहिए, फेलो फीलिंग चाहिए, देने की भावना चाहिए। ये ताजमहल के वो खुरदुरे पत्थर हैं जिनके ऊपर वो बिल्डिंग स्टेबल रहती है, ये जीवन के वो पत्थर हैं जिनके ऊपर जीवन रूपी बिल्डिंग स्टेबल रहती है। कुछ दिन पहले मैंने एक समाचार और पढ़ा क्या, मैंने देखा, मैं भिलाई गई थी तो वहाँ मुझे एक समाचार सुनने को मिला, वो भी इसी प्रकार का था। कोई आईपीएस ऑफिसर बहन थी और उसने भी बड़ी मेहनत करके अपनी वो पोस्ट प्राप्त की थी, आप सब मेरे से ज़्यादा जानते, लेकिन उसकी ट्रांसफ़र एक ऐसे क्षेत्र में कर दी जो उसको नहीं रास आया। ट्रांसफ़र तो कहीं भी हो सकती है, या तो दंगे होंगे या इतनी सहूलियत नहीं होंगी, तो वो रिजाइन दे करके घर में बैठ गई। उसने कहा मेरे को तो नौकरी करनी ही नहीं है, उसको बहुतों ने समझाया अरे इतनी तेरी ऊंची पोस्ट है और क्या हो गया, ट्रांसफ़र आज यहाँ हुई है कल कहीं और हो जाएगी, लेकिन उसने नहीं माना तो परिवार के लोग बहुत दुखी हुए, वो खुद भी अंदर ही अंदर बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। तो वो हमारी ब्रांच में आई और बहन जी ने उसके साथ बातचीत की, उसको समझाया, और मैं भी उन दिनों वहाँ गई हुई थी, तो बहन जी ने फिर ये समाचार मेरे को भी सुनाया और कहा कि आपके होते होते भी हम उस बहन को बुलाएंगे, थोड़ा समझाएंगे। तो ये वाली बात सुनकर के पुनः मेरे को विचार आया कि देखो कितनी अच्छी बहन है, बहनें तो बहुत कम इस प्रकार की डिग्री लेती हैं और बहनें तो बहुत कम इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं, उसने कितनी चुनौतियों का सामना किया होगा। लेकिन एक छोटी सी चुनौती आई, कौन सी चुनौती आई, एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट चाहिए। हो सकता है बड़ा ऑफिसर अच्छा ना हो, छोटा अच्छा ना हो, सकता है ड्यूटी अच्छी ना हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो हमको पता ही है कि सब जगह हमारे अनुकूल चीज़ें नहीं मिलती, ये भी जीवन का एक जरूरी पाठ है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम अपने आप को ढाल सकें। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो तो वो पानी को अपना गुरु बना ले। पानी में एक बहुत बड़ी विशेषता है, उसको बोतल में डालो बोतल जैसा, कटोरी में डालो कटोरी जैसा, चुल्लू में डालो चुल्लू जैसा, पतली नली में डालो उस जैसा, छोटे छिद्र में भी पानी प्रवेश कर जाता है, अपने आप को मोल्ड कर लेता है। तो कहने में तो सरल लगता है, लेकिन पानी में ये विशेषता क्यों आई, क्योंकि उसकी अपनी रिजिडनेस नहीं है, मैं नहीं है उसमें, वो अपने आप को इस कदर लचीला रखता है कि जहाँ मर्जी एडजस्ट हो जाए। तो जीवन में भी ऐसे ही है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो बिजनेस हो, कई प्रकार के लोग मिलेंगे, कई प्रकार के कलीग मिलेंगे, कई प्रकार के साथी मिलेंगे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर सफलता चाहिए, उत्तरोत्तर अपने को उन्नति चाहिए, तो अपन को अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। अपन ये तो नहीं कह सकते भाई पहले तू बदल जा उसके बाद मैं सुखी हो जाऊँगा। अच्छा मान लो अपन ने जोर लगा करके उसको बदल भी दिया, फिर क्या होगा, फिर दूसरा आएगा उसकी जगह, फिर कहेंगे नहीं भाई इसको भी बदलो, मैं तो इससे भी दुखी हो गया। एक बार हमारे पास एक भाई आया था तो उसको एक कंपनी में नौकरी मिली, तो उसने कहा देखो जी मैं उस कंपनी में नौकरी नहीं करूँगा, मेरा साहब अच्छा नहीं है। उसने कंपनी बदल ली, दूसरी में गया तो साहब बहुत अच्छा मिला, लेकिन जो साथी थे ना उनके साथ नहीं बनी, बोला मैं तो इसमें भी नौकरी नहीं करूँगा, मेरे साथी अच्छे नहीं हैं। उसके बाद तीसरी जगह गया तो साथी भी बहुत अच्छे मिले, लेकिन जो छोटे लोग थे जिनके ऊपर उसको कमांड करनी थी उनसे परेशान हो गया, बोला वो लोग तो कहना ही नहीं मानते हैं, मैं तो यहाँ भी नौकरी नहीं करूँगा। उसके बाद चौथी में गया तो बोला साहब भी अच्छा है, साथी भी अच्छे हैं, और जो छोटे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन सैलरी मेरे को अच्छी नहीं मिलती है, मैं तो यहाँ भी नौकरी नहीं करूँगा, उसको भी छोड़ दिया। तो हमने उसको कहा, भैया तूने चार जगह बदली, कुछ ना कुछ अच्छा नहीं मिला, पांचवीं जगह सारी चीजें अच्छी मिल जाएंगी क्या? ये जो हमारा शरीर है ना, ये भी सारा अच्छा नहीं है। किसी के कान में दर्द रहता है, किसी की आंख में दर्द रहता है, किसी की रीढ़ की हड्डी में सीधा बैठने की शक्ति नहीं है, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के दांत हिल रहे हैं, है ना? पर आप इसको बदल सकते हो क्या? और अगर खुदा ने खास्ता बदल भी लिया तो दूसरा कहां से लाओगे? दूसरा जो मिलेगा वो भी परफेक्ट शरीर है क्या? हम जन्म से ही देख रहे हैं कि बॉडीज जन्म से ही डिफेक्टेड आ रही हैं आजकल तो, या छोटे बच्चे को भी रोग। तो जब ये अपनी चीज 24 घंटे साथ रहने वाली, ये भी परफेक्ट नहीं है, पर इसको चलाते हैं, कोई बात नहीं, इधर का दांत खराब है तो इधर वाले से खा लो, चलाते हैं ना, तो ठीक है। अब सांप अच्छा है, बराबर वाले अच्छे नहीं है, तो भाई सांप को देख देख के खुश हो लो, बराबर वालों के लिए शुभ सोच लो, भगवान इनकी बुद्धि ठीक करना, मेरी भी कुछ ठीक करना, ताकि कुछ मेरी ठीक हो, कुछ इनकी ठीक हो, तो मामला आगे चला जाए। इसलिए पढ़ाई का ये भी अनिवार्य चैप्टर है कि हम जहां भी जाएंगे अपने आप को मोल्ड कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, बदल लेंगे, लेकिन जगह छोड़ने की और भागने की कोशिश नहीं करेंगे। जगह छोड़ देंगे और भागेंगे तो क्या होगा? वो आदत ही पड़ जाएगी। कहते हैं एक बार एक कौवा था, तो उसने कहा मैं जर्मनी जा रहा हूं। तो कोयल ने पूछा क्यों? तो बोला मैं यहाँ जिस भी मुंडेर पे बैठता हूँ ना, लोग उठा के पत्थर मारते हैं, मैं तो जर्मनी जाता हूँ। तो कोयल ने बड़े प्यार से पूछा, भैया तू भारत को तो छोड़ के जा रहा है, पर अपनी आवाज भी भारत में छोड़ के जा रहा है कि नहीं, कि उसको भी साथ लेके जा रहा है? बोलो तो मेरे साथ जाएगी। तो बोला वहां भी देखना पत्थर ही पड़ेंगे, ये दोष भारत का नहीं है, ये तेरी आवाज का है। तो आवाज तो जहां भी जाएगी वही रिजल्ट मिलेगा। तो शिक्षा का मतलब है कि व्यक्ति अपने आप को देखे, अपने आप को बदले, और जब हम बदलते हैं तो बाकी सब कुछ बदल जाता है। अब देखिए, मुझे मालूम नहीं है, भले मैं यहाँ रहती हूँ, पूर्व किधर है और पश्चिम किधर है मालूम नहीं है, पर मान लीजिए, कभी दिशाओं से काम नहीं पड़ता है ना, तो मुझे मालूम नहीं है, पर मान लीजिए पूर्व मेरे सामने है, मान लीजिए, और पश्चिम मेरे पीछे की ओर है। अब मैं जीवन भर कहती रहूं कि पश्चिम मेरे सामने आ जाए, पश्चिम मेरे सामने आ जाए, आएगा क्या? लेकिन जरा सी गर्दन घुमा लूं तो क्या हो जाएगा? मैं बदली तो दिशाएं बदल गई, और अगर हम न बदलें तो एक छोटे से तिनके को भी नहीं बदल सकते। दिशाएं तो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए अध्यात्म हरेक मानव को ये सिखाता है कि हर परिस्थिति में, हर वातावरण में अपने आप को बदलिए, परिवर्तन कीजिए, मोल्ड कीजिए। और इसके लिए जरूरी पाठ है कि आप अपने आप को पहचानिए, आप कौन है? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हमारे पास किसी जमाने में नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, और उन यूनिवर्सिटीज का क्या वर्णन करें, एक यूनिवर्सिटी में 60 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, और बाहर के देश, भले ही उस समय इतने देश नहीं थे, बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जो बाद में अस्तित्व में आए हैं, लेकिन जितने भी थे उस जमाने में, वो यहाँ उनके बच्चे लोग यहाँ अध्ययन के लिए आया करते थे। और इतनी पीस थी, इतना डिसिप्लिन था उन यूनिवर्सिटीज में, आज की तरह से कोई हड़ताल हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। और आप इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं, जब सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था, तब हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, और उसमें चाणक्य नाम का एक बहुत फेमस शिक्षक था। तो कहती हैं कि एक बार तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पेड़ की छाया के नीचे एक टीचर पढ़ा रहा था, और एक 8-10 साल का बच्चा हाँफता हाँफता दौड़ा दौड़ा वहां तक पहुंच गया। तो जो केयर टेकर था, उसने उस बच्चे को रोकने की कोशिश की थी कि वहाँ टीचर पढ़ा रहा है, आप वहाँ तक मत जाओ, जो बात है मुझे बताओ, लेकिन वो बच्चा इतना तेज दौड़ा उसके हाथ में ही नहीं आया और सीधा टीचर के सामने आके खड़ा हो गया। और हाँफता हाँफता फिर वो केयर टेकर भी आया, तो वो तो डर गया, टीचर मुझे कहेगा तूने इस बच्चे को आने क्यों दिया या यहाँ क्यों घुस गया। लेकिन टीचर बड़ा सिंपैथेटिक था, उसने प्यार से पूछा बेटा तुम कौन हो। तो वो 8-10 साल का बच्चा कहता है मैं आपसे यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। और आज उस बच्चे को हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। जब चाणक्य के साथ मगध में अन्याय हुआ था तो वो एक किसी गाड़ी वाले बैलगाड़ी में बैठ करके तक्षशिला आया था। अन्याय ये हुआ था कि उसके पिता ने मगध के राजा के प्रति थोड़ा क्रांति में हिस्सा लिया था, तो मगध के राजा को लगा कि ये तो मेरा शत्रु है, तो उसके पिता को भी मरवा दिया गया था, माँ भी फिर शरीर छोड़ गई थी, और वहाँ गुरुकुल के जो टीचर थे उन्होंने उसको पढ़ाना मना कर दिया था, क्योंकि उनको गुरु से, उनको राजा से भिक्षा और वो सब मिलता था। तो उन्होंने कहा अगर हम इस द्रोही बच्चे को पढ़ाएंगे तो हमको राजा से मिलेगा नहीं कुछ भी। तो बच्चे को जब वहाँ एजुकेशन नहीं मिली तो वो बैलगाड़ी में बैठ के तक्षशिला आ गया, और वहाँ उसने ये प्रश्न पूछा। तब उस गुरु को लगा ये तो बड़ा होवनहार विद्यार्थी है, उसको बिठाया, उससे बहुत सारे सवाल पूछे और उसने बहुत आगे तक की जानकारी दी, बुद्धि तो उसकी तेज थी। एक लंबी कहानी है। और बाद में वो भारत का एकीकरण करने के निमित्त बना। लेकिन यहाँ इस बात का रेफरेंस इसलिए आया कि उन विश्वविद्यालयों में अगर इतने महान शिक्षक थे, इतने देशभक्त शिक्षक थे, वहाँ का ये मोटो था कि शिक्षा और देशभक्ति अलग अलग नहीं है। जो शिक्षा देशभक्ति न सिखाए वो शिक्षा शिक्षा ही नहीं है। और जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो चाणक्य ने अपने सारे जो ब्रह्मचारी स्टूडेंट्स थे उनकी एक फौज बनाई और उस फौज को, निहत्थी फौज को, सिकंदर के योद्धाओं के सामने खड़ा किया। ये एक लंबी कहानी है। तो देशभक्ति शिक्षा के साथ साथ थी। तो मैंने ये बात इसलिए यहाँ ऐड की कि वहाँ की शिक्षा का बेस था नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानिए, पहला पाठ था। और इस बेस पे खड़ी हुई वो शिक्षा कितनी समाज उपयोगी थी, कितनी देश उपयोगी थी। तो ये पहला पाठ है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या करूं इस समाज के लिए, मुझे इस समाज से कितना लेना है और मुझे इस समाज को कितना देना है। मेरे सामने वो क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। मानव का एक बच्चा जब जन्म लेता है बहुत मेहनत होती है उसकी पालना पर। एक गाय के बच्चे ने जन्म लिया, गाय शरीर छोड़ गई, 2-4 घंटे के बाद गाय का बच्चा खड़ा होकर के घास दाना पानी खाना शुरू कर देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बच्चे पर। लेकिन एक मनुष्य के बच्चे को जन्म देते उसकी माँ चली गई, क्या होगा, बहुत हलचल मचेगी, नाते रिश्तेदार जगह जगह से फोन आएंगे, अरे उस बच्चे का क्या हुआ, कोई उसकी संभाल करता है कि नहीं करता है, बच्चा ठीक ठाक है, तो कोई कहेगा जी बच्चे की नानी ले गई, बुआ ले गई, चाची ले गई, मामी ले गई। अच्छा, कोई उस बच्चे की संभाल करेगा, लेकिन क्या एक से संभाल हो जाएगी पूरी? अगर नानी उसकी संभाल करेगी तो फिर घर में और लोग चाहिए जो नानी वाले काम करें, कोई कमा के लाने वाला चाहिए जो बच्चे को कपड़ा पहनाए, जूता पहनाए। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी डिमांड बढ़ेगी, स्कूलिंग चाहिए उसको, गर्मी सर्दी की बहुत कुछ चाहिए। और जब तक वो बच्चा 20-22 साल का होगा तब तक क्या करेगा, समाज से लेता रहेगा ना, समाज की बनाई सड़कों पे चलेगा, बच्चे को नहीं मालूम ये कंक्रीट कहाँ से आई, किसने बनाई, धूप में खड़े होके किसने मेहनत की, लोगों के लगाए पेड़ों की छाया में बैठेगा, किसी ने धर्मार्थ डिस्पेंसरी खोली होगी उसमें जाके फ्री की दवाई ले आएगा, ऐसा भी होता है, किसी की लगाई प्याऊ में कभी ना कभी पानी भी पिएगा, गवर्नमेंट की बसों में सफ़र भी करेगा, किसी ने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई होगी उसमें बैठ करके पढ़ाई भी पढ़ेगा, फीस तो थोड़ी सी देगा, अगर वो साइंस का स्टूडेंट है, करोड़ों की लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंट करेगा, उसकी फीस तो इतनी ज्यादा नहीं है। तो वो 22 साल तक बच्चा समाज से लेता रहेगा, लेता रहेगा। अगर माँ भी है, बाप भी है, तो भी माँ बाप भी कोई कम मेहनत तो नहीं करते, और केवल माँ बाप की मेहनत से तो बच्चे का काम नहीं चल जाता है। दादा दादी, चाचा चाची, अड़ोसी पड़ोसी, कोई पीठ थपथपाता है, कोई सिर पे हाथ फिराता है, कोई उसके साथ तोतला बोल करके उसका उमंग बढ़ाता है, कोई उंगली पकड़ करके थोड़ा घुमाता है, कोई कुछ सिखाता है, तब जा करके वो बच्चा एक नौजवान बच्चा बनता है। अब 22 साल का कितना कर्ज है उसके सिर पे, किस किस से लिया है उसने, और 22 साल के बाद जिसको हम बालिग कहते हैं, बच्चे का फर्ज क्या है, वो चुन चुन करके उन लोगों का कर्ज उतारे जिनसे उसने लिया, वो दादी जिसकी गोद को उसने कभी गंदा किया था, अगर आज बीमार है तो उसके गंदे कपड़े धोए, ये उस बच्चे का फर्ज है, वो माँ जो उसके लिए सारी रात जागी थी, अगर आज उस माँ को जरूरत है तो वो भी उस माँ के लिए जागे, वो बाप जिसने कड़ी मेहनत करके पैसा उसके लिए इकट्ठा किया, आज अगर उसे अपनी सैलरी का कुछ पैसा उस बाप के लिए खर्च करना पड़ता है तो करे, वो पास पड़ोस के लोग जिन्होंने कभी उसको तोतली भाषा में बोलना सिखाया, सिर पे हाथ फिराया, अगर आज उन पड़ोसियों की हारी बीमारी में, अभाव में उसको मदद करनी पड़े तो वो करे, छुट्टी लेनी पड़े तो ले ले। ये कृतज्ञता का एहसास, मैंने लिया है और मुझे वापस लौटाना है, इसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, क्योंकि लिखा पढ़ी में तो प्रेम खत्म हो जाता है, ये तो प्रेम के नाते हैं, देने वालों ने प्रेम के बलबूते पे दिया था और अब आप प्रेम के बलबूते पे उनको लौटा दीजिए, बीच में कागज पेन बही खाता नहीं है लेकिन प्रेम है। और आप ले तो लेते हैं लेकिन अगर आप लौटाते नहीं है तो आप कर्जदार के कर्जदार। अब किसी कर्जदार को शांति हो सकती है क्या, देने वाले तो दे के चलो भूल गए, माँ कहती है कोई बात नहीं है, मैं इसके लिए कितने दिन जागी, मैं भूल गई, आज बेटा मेरे से बात नहीं करता है, पर वो कर्ज आपके सिर पे है, आपको शांति से सोने नहीं देगा, आप बेशक सेवा न करें। तो ये भी पढ़ाई का एक अनिवार्य पाठ है, बच्चे को ये एहसास कराना कि बेटा ये तू पेंसिल जिससे तू लिख रहा है ये कहां से आई है, ये तू बस्ता पंधे पे उठा के लाता है ये कहां से आया है, एहसास कर तेरे को कितने लोग देने में लगे हुए, और प्लस ये नेचर दे रही है, कहां से तू ऑक्सीजन ले रहा है, कहां से तू पानी पी रहा है, किस धरती पर तू पांव रख रहा है, रोज तू इस हवा पानी ऑक्सीजन को गंदा कर रहा है, कितने ऑक्सीजन लेते हैं और कितनी कार्बन छोड़ते हैं, जीवन में तूने कितने पेड़ लगाए बेटा, तूने हजारों पेड़ों से ऑक्सीजन ली, कम से कम 10 पेड़ तो लगा के जा, तूने हजारों तालाबों के पानी को गंदा किया, तू थोड़ा एक तालाब तो खुदवा करके जा, कितनी सारी जमीन को पॉल्यूटेड किया, तू कहीं एक टुकड़े में बगीचा तो लगा करके जा, जंगल तो लगा के जा थोड़ा सा, ताकि तू उऋण हो जाए। ये तो वो ऋण है जो हमने पर्सनल लिया है, जो अति अनिवार्य है, जो लेना पड़ता है, इसलिए माँ बाप बच्चे पे, समाज बच्चे पे इन्वेस्टमेंट करता है। अब ऐसा है कि हम ले तो लेते हैं लेकिन देते समय मुकर जाते हैं, मेरा तुझे बच्चों का ही खर्चा नहीं चलता बहन जी, 5,000 बच्चे के एडमिशन में लग गए, ए मम्मी गले में चेन है ये भी मेरे को दे देना जरा, अगले बच्चे का एडमिशन करवाना है। तो पहले तो तूने 22 साल तक कर्ज लिया और अब तू अपने बच्चों के लिए कर्ज ले रहा है, भाई तू उतारेगा कब, क्यों, क्योंकि ये पाठ शिक्षा से मिस हो गया, ये कृतज्ञता का एहसास मिस हो गया। इसलिए पढ़े लिखे लोग माफ करना ज्यादा कृतघ्न है, बाप ने नौकरी लगवा दी, 22 अब मैं जानू मेरा मियां जाने कितनी कमाते हो, बोला 22,000 महीने की, माँ को कितना देते हो, बोला 10,000, क्यों, किसने कहा था 10,000 माँ को दे, 1,000 पकड़ा दिया करो, अपने खर्चे कम है क्या, वो कल आई है और आज कान में फूंक मारना शुरू कर देती है, जब इसके कपड़े धोने थे गंदे तब तू कहां गई थी, जब ये बीमार हुआ इसको दवाई चाहिए थी तब तू कहां गई थी, तब कान में फूंक मारने क्यों नहीं आई, ये तो तेरे को 22 साल का बना बनाया मिल गया, माँ ने किस कष्ट से पाला, बाप ने किस कष्ट से पाला, तेरे को थोड़े पता है। तो पढ़ लिख करके हमने क्या सीखा, परिणाम क्या निकला, समाज टुकड़े टुकड़े हो गया। कहते हैं जिनके बच्चे नहीं होते वो दुखी हो, वो तो अलग बात है, लेकिन बच्चे वाले ज्यादा दुखी हैं। नहीं है तो कहते बहन जी सबर कर लेते, लेकिन आंखों के सामने ऐसा करते हैं सबर होता ही नहीं। तो जब तक शिक्षा में मूल्य नहीं, समाज मूल्यवान नहीं बन सकता। बेस है, पहली गुरु माँ है और दूसरा गुरु हमें स्कूल में मिलता है। ये मूल्य अध्यात्म के थ्रू हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि हमने शिक्षा में से अध्यात्म को निकाल दिया। आज हम कहते हैं जी हम धर्म निरपेक्ष, हम किसी धर्म की शिक्षा नहीं देंगे। ठीक बात है, हम किसी धर्म की शिक्षा नहीं देंगे, मान लिया, अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे धर्म हैं। लेकिन धर्म में और मूल्यों में तो अंतर है ना। आप धर्म की शिक्षा मत दीजिए, आप मूल्यों की तो शिक्षा दीजिए ना। क्या आप धर्म निरपेक्ष के साथ मूल्य निरपेक्ष भी हो गए? क्या आप धर्म को छोड़ करके मूल्यों को भी छोड़ बैठे? मूल्यों के बिना हमारा जीवन कैसे चलेगा? इसलिए अनिवार्य है मूल्य शिक्षा। और मूल्य जीवन में आते कैसे हैं, ये उससे भी मिलियन डॉलर अधिक इंपॉर्टेंट सवाल है। कहती हैं वैल्यूज कांट बी टॉट, दे हैव टू बी कॉट। मूल्य कभी भी पढ़ाए नहीं जाते, मूल्यों को देख देख करके सीखा जाता है। मैं जब पहली बार इस विश्वविद्यालय में आई, मैं भी एक कॉलेज की स्टूडेंट थी, मुझे मेरी लौकिक माँ ने कहा बेटा वहाँ एक ब्रांच है, तुम वहाँ चली जाना। तो एक दिन कॉलेज का हाफ पीरियड फ्री था, तो मैं पहली बार ब्रांच में गई। तो मुझे ना तो बहनों का पता था, ना ब्रांच का पता था, माँ ने कहा मैं चली गई, मुझे ना कोई जानता पहचानता था। तो मेरे से थोड़ी बड़ी उम्र की एक बहन थी, वो मुझे वहाँ सामने खड़ी मिली। उसने मेरी माँ का नाम लेके कहा तुम फलाने की कन्या हो। अच्छा, वो कई बार कहती थी बहन जी मेरी कन्या है, मैं उसको भेजूंगी, आप आ गई, अच्छा आओ। तो बरसात हो रही थी, बहुत ठंडी थी, और सर्दी शुरू हो जाए और थोड़ी बरसात पड़े तो कपकपी तो शुरू हो जाती है ना। मैं उस बहन को जानती थी, ना वो बहन मुझे जानती थी, तो मैं तो बड़े संकोच से जा रही थी। तो जैसे ही मुझे देखा, मेरा हाथ पकड़ा उसने और कहती है तेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए हैं, तेरे को लगता है बड़ी ठंडी लग रही है, आ अंदर आ। और ऐसे कह के, वो ज़माना बहुत पुराना था, आज तो हमारी शाखाएँ बहुत विस्तृत हो गई हैं, छोटी सी शाखा थी और उसमें कितनी किचन थी, जितने दायरे में मैं बैठी हूँ बस एक दो व्यक्ति जा सके, इतनी छोटी सी किचन थी, स्टोव जलता था, धुएं से काली हुई पड़ी थी, बहुत छोटी शाखा थी। तो वहाँ बैठ के उसने स्टोव जलाया, मेरे मन में विचार आया कि ये मुझे कुछ ज्ञान तो सुनाती नहीं है और स्टोव जला रही है। स्टोव जला के पतीली रखी, घी डाला और एक कटोरी हलवा बनाया और मेरे हाथ पे रख के कहती है तू बहुत ठंडी हो गई है और पहले ये हलवा खा ले, थोड़ी गर्माई आएगी, फिर मैं तेरे को ज्ञान सुना। तो मैं अंदर तक पिघल गई, मैंने कहा मैं चाची के घर जाती हूँ, नानी के घर जाती हूँ, ठंड तो मुझे तब भी लगती, लेकिन कभी मेरी नानी चाची ने ऐसे हाथ पकड़ के नहीं कहा कि पहले हलवा खा ले फिर हम तेरे से बात करेंगे। और ये बहन तो मेरी कुछ भी नहीं लगती, इसने तो मुझे कभी देखा नहीं, जानती नहीं, और मैं कोई VIP नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं, कोई नाम नहीं, स्कूल की एक स्टूडेंट हूँ छोटी सी। और ये कैसे चम्मच डाली और कटोरी में और मेरे पास बैठ गई, जैसे कोई माँ बच्चे के पास बैठ जाती है। मैंने कहा ये तो बहुत उम्र में बड़ी भी नहीं है, कोई बड़ा बूढ़ा होता है चलो प्यार इमर्ज हो जाता है, दो चार साल मेरे से बड़ी है, पहले खा ले। मैंने कहा दीदी आप भी खाओ। नहीं नहीं, मैंने तो अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है, तुम खाओ पहले, गर्म हो जाओ। तो मैं अंदर तक पिघल गई, मेरी माँ कहती थी बेटा वहाँ बहुत प्यार है, लोग बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने समझा प्यार माँ कहती है, माँ खुद ऐसी भोली भाली है तो किसी के प्यार में पिघल गई होगी। दुनिया में आज कौन किसको प्यार करता है, लोग सब स्वार्थी। लेकिन जब मैंने आंखों से देखा, उस प्रेम को प्रकट होते हुए देखा, उस प्रेम का मैंने साक्षात्कार किया, तो मुझे लगा कि सचमुच मनुष्य मनुष्य को प्रेम से जीत सकता है। ज्ञान बाद की चीज है, लेकिन जिगरी प्रेम, दिली प्रेम, किसी के साथ ऐसा प्रेम कि हम उसके दिल में उतर जाएं, वो हो सकता है। तो मैंने क्या सीखा, प्रेम का पाठ सीखा, किसी का दिल जीतना सीखा, किसी को अपना बनाना सीखा, लेकिन भाषण से नहीं सीखा, उसके कर्म से सीखा। आज इस घटना को घटे कितने बरस हो गए, लेकिन मुझे याद है, अगर भाषण होता तो हो सकता है मैं भूल जाती, लेकिन कर्म को देखा तो उसकी छाप लग गई। तो चाहे कोई भी मूल्य हो, अपन ऑनेस्टी पे लंबे चौड़े लेख लिखें, लंबे चौड़े भाषण करें, ईमानदार होना चाहिए, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, सरकारी संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, है ना, सुनने वाले नहीं सुनेंगे। लेकिन मैं ऑनेस्ट हूं, सारे लोग मेरे चारों तरफ डिसऑनेस्ट हैं, लेकिन मैं ऑनेस्ट हूं तो क्या होगा, लोग मुझे देख करके ऑनेस्ट बन जाएंगे। इसलिए वैल्यूज कांट बी टॉट, दे हैव टू बी कॉट। मूल्यों को पढ़ाया नहीं जा सकता, मूल्य देख देख करके सीखे जा सकते हैं, और मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रवाहित होते हैं। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रवाहित होती है। तो इस हिसाब से मूल्यों का सिंबल किसको बनना पड़ेगा, जो बड़ी हैं, और उन्हें देख करके मूल्य कौन सीखेंगे, जो छोटे हैं। तो हमारे शिक्षक मूल्यों का साकार रूप बने, ये भी इस आयोजन का एक उद्देश्य है। शिक्षकों में बाकी लोगों की भेंट में अधिक मूल्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसलिए आज भी हम कहते हैं आचार्य देवो भव। किसी ने ये नहीं कहा कलेक्टर देवो भव, एसपी देवो भव, मिनिस्टर देवो भव, क्या कहते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। क्योंकि मूल्य पिता से बच्चे में आते हैं, माता से बच्चे में आते हैं, और शिक्षक से बच्चे में आते हैं। तो आप सब आचार्य हैं, गुरुजन है, आचार्य माना जो अपने आचरण से सिखाए। तो जीवन में मूल्य आए, आचरण श्रेष्ठ बने, ये चीजें भीतर की हैं, भीतर से बाहर निकलती हैं, ये हमारे अंदर हैं, लेकिन ये बाहर कैसे प्रकट हो। जैसे चंदन में खुशबू है, लेकिन उसको घिसते हैं तो क्या होता है, वो फैलने लगती है। अगर उसको यूं ही रख दिया आपने तो फैलेगी नहीं। तो हमारे भीतर जो आचरण की खुशबू है, मूल्यों की खुशबू है, वो बाहर प्रकट हो, निकले, वो कब होगा, कैसे होगा, वो तब होगा जब हमारे भीतरी अस्तित्व का हमें ज्ञान होगा, हम कौन है। ये प्रश्न मैं कई बार आपसे पूछ चुकी हूं और फिर बीच में छोड़ के आगे चली जाती हूं। अब इस प्रश्न का खुलासा करेंगे, कौन है हम। बहुत सारे परिचय हैं हमारे, किधर से शुरू करें, वो सब परिचय संसारी के। असली परिचय क्या है, असली परिचय ये है कि हम आत्मा हैं, पक्का, सबको पक्का। फिर मुझे एक बात याद आती है, एक बार मैं एक सेवा केंद्र पर गई थी, तो वहां मुझे एक बुजुर्ग भाई मिले, तो उसने बड़ी मजेदार बात सुनाई। उसने कहा, बहन जी, जब मैं पहली बार आपकी ब्रांच में आया था तो मुझे एक बहुत छोटी बहन दरवाजे पर खड़ी मिली थी, तो उस छोटी बहन ने मेरे से पूछा, जैसे आम तौर पे कोई भी आता है तो पूछती हैं, तो उस छोटी बहन ने पूछा, भाई साहब आप कौन है। तो मैंने कहा, मैं अमुक अमुक डिपार्टमेंट का रिटायर्ड जीएम हूं। तो उस बहन ने हाथ जोड़ के कहा, भाई साहब माफ करना, मैंने आपका डेजिग्नेशन नहीं पूछा था, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आप कौन है। तो बोला, मेरे को थोड़ी कॉन्शियस आई कि, तो मैंने डेजिग्नेशन बता दिया। तो बहन जी पूछती है, आप कौन है, तो मैं कौन हूँ। तो मैंने कहा, बहन जी मैं ब्राह्मण हूँ। तो बहन जी ने फिर कहा, भाई साहब माफ करना, मैंने जाति तो नहीं पूछी थी। तो मैं फिर कॉन्शियस में आया, रही तो मैंने जाति बता दी। तो बहन जी मैं बीई हूं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो बहन जी ने फिर मुझे टोक दिया, बोली मैंने एजुकेशन कहाँ पूछी थी। भाई साहब आपने तो एजुकेशन बता दी, आप बताओ ना आप कौन हो। तो मैंने कहा ये एजुकेशन बता दी, पद बताया, जाति बताई, बहन जी क्या पूछना चाहती है। तो बहन जी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ी है, मैं हद की बातें बता रहा हूँ, थोड़ा बड़े रूप में बता। तो बहन जी मैं भारतीय हूँ, भारतीय। तो बहन जी ने फिर कहा भाई साहब माफ करना, मैंने आपकी नागरिकता तो नहीं पूछी, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आप कौन है। तो मैंने सोचा मैं इतना बड़ा हो गया, नौकरी की पढ़ाई की, मेरे सामने फार्म आता था, साहब अपना परिचय अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, मैं ये चार पांच बातें लिखता था, मेरी इंट्रोडक्शन पूरी हो जाती थी। बहन जी को इंट्रोडक्शन नहीं मिल रही है, अब क्या बताऊं, कुछ बचा ही नहीं। तो मैं बहुत सोच में चला गया। तो बहन जी ने कहा भाई साहब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये जितनी बातें आपने बताई हैं ना ये सब के सब तो आवरण है, पर इनको ओढ़ने वाला कौन है। और आवरण तो भाई साहब जन्म से लेके चढ़ते जाते हैं। जब आप इस संसार में आए, आपका ना पद था, ना एजुकेशन थी, ना जाति थी, ना पद, ना धर्म, फिर एक आवरण चढ़ा, किस बात का, जिस जाति में पैदा हुए उस जाति में, जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म का आवरण चढ़ गया, उसके बाद जिस पेरेंट्स के यहाँ पैदा हुए उसके पिता के नाम से जाति गोत्र बन गया, उसके बाद स्कूलिंग ली वो आवरण चढ़ गया, उसके बाद डिग्री ली उसका आवरण चढ़ गया, उसके बाद शादी की तो पति या पत्नी बन गई वो आवरण चढ़ा, बच्चे हो गए तो माता या पिता बन गए वो आवरण चढ़ा, नौकरी की तो डेजिग्नेशन का आवरण चढ़ा, दादा दादी बन गए, पोतरे हो गए तो दादा या दादी बन गए, नाना या नानी बन गए, तो ये तो आवरण चढ़ते गए चढ़ते ही जाएंगे। रिटायर हो गए तो एक्स का आवरण चढ़ गया, लेकिन इन सब आवरणों को ढोने वाला कौन है, असली चीज जिसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी हुई है। तो बिल्डिंग तो हमको याद है, उसको 7 स्टोरी 8 स्टोरी 10 स्टोरी बन गई, पर वो नींव कहाँ गुम हो गई जिसके ऊपर ये स्टोरी खड़ी हुई है, उस नींव को तो भूल गए, उन पत्थरों को तो छिपा दिया। तो वो नींव क्या है, मैं कौन हूं, मैं वो शुद्ध अविनाशी पवित्र आत्मा हूं जो इस संसार में खाली हाथ आई और इस संसार से खाली हाथ जाएगी। दिस इज माई रियलिटी। अगर मैं इस रियलिटी को भूल गई तो वो इसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी हो रही है वो मुझे चौंधिया देंगी, और मेरे अंदर क्या आएगा, मैं ये भी हूं, फिर मैं ये भी हूं, फिर मैं ये भी हूं, और मैं ये हूं तो तुम ये नहीं हो इसलिए मेरे से छोटे हो, फिर कंपैरिजन आएगा, फिर सुपीरियरिटी या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। लेकिन अगर आपको वो नींव याद है, मैं भी आत्मा हूं और तुम भी आत्मा हो, मैं भी खाली आता था और तुम भी खाली आता है, मेरे को भी वापस लौटना है, तुमको भी वापस लौटना है, ये चाहे कितनी स्टोरी चढ़ गई, ये तुमको भी छोड़नी है और मेरे को भी छोड़नी है, तो देखो क्या होगा, इक्वलिटी आ गई, तुम मेरे भाई, मैं तुम्हारा भाई, भाई भाई एक बाप के बच्चे, ना छोटा कोई ना बड़ा कोई, तुम मुझे रिस्पेक्ट दो मैं तुमको रिस्पेक्ट देता हूँ, ये बिल्डिंग तो गिरने वाली है ताश के पत्ते की तरह। तो इक्वलिटी आ गई, ईगो खत्म हो गया, तेरा मेरा खत्म हो गया, जाति भेद धर्म भेद खत्म हो गया। तो ये भेद तब मिटेंगे जब हम अपने मूल स्वरूप को पहचानेंगे और उसमें टिकेंगे, उसी दृष्टि से एक दो को देखेंगे। तो यह अध्यात्म का पहला पाठ है, आत्मा अनेक मूल्यों का स्वरूप है, हमें मूल्य बाहर से मांगने नहीं है। जैसे मंदिर में जाके कहते भगवान शांति दो, शांति एक बहुत बड़ा मूल्य है, लेकिन ये हमारे अंदर है, हमें इसको रियलाइज करना है। रियलाइज शब्द का भी अर्थ क्या है, रियल प्लस आइज, ये जो आइज है ना ये तो फॉल्स आइज, और रियलाइज रियल आई है, ये फॉल्स आइज कैसी है। अब देखो मुझे पीछे का दिखाई नहीं दे रहा, आपको अपने पीछे का दिखाई दे रहा है क्या, चलो पीछे का ना सही, अपने चेहरे का दिखाई दे रहा है। कई बार मान लो यहां तिनका लग जाए तो कोई दूसरा व्यक्ति बताता है भाई आपके यहां तिनका लगा है उतार लो, तो ये आंख तो बेचारी अपने आप को भी नहीं देख पाती, आंख लाल हो जाए तो दूसरा व्यक्ति बताता आज क्या हुआ भाई तुम्हारी आंख लाल क्यों है, आंख ने अपने आप को ही नहीं देखा। तो जिस आंख की शक्ति इतनी लिमिटेड है, वो पीछे का नहीं देख सकती, दूर का नहीं देख सकती, अंधेरे में नहीं देख सकती, अपने आप को नहीं देख सकती, बुढ़ापे में नहीं देख सकती, बुढ़ापे की बात छोड़िए आजकल तो छोटी आयु में भी कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये आंख जो अपने आप को भौतिक आंख अपने भौतिक अस्तित्व को नहीं देख सकती, वो आत्मा को कैसे देखेगी जो गुप्त है अंदर है। तो उसको देखने के लिए चाहिए रियल आईज, रियल आईज माना रियलाइज। तो शांति को आप कैसे देखेंगे, प्रेम को आप कैसे देखेंगे, पवित्रता को आप कैसे देखेंगे, वो देखने की चीज नहीं है, वो रियलाइज करने की चीज है, उसको आप रियलाइज करेंगे। और जब भीतर रियलाइज करेंगे तो आपको बाहर दिखाई देगा, आप भीतर रियलाइज नहीं करेंगे तो आपको बाहर भी दिखाई नहीं देगा। जो भीतर होता है ना हमको बाहर वही दिखाई देता है। अंदर शांति है तो बाहर क्या दिखाई देगा, शांति दिखाई देगी। अंदर पॉजिटिविटी है तो बाहर नजर किस पर पड़ेगी, पॉजिटिव चीजों पर नजर पड़ेगी। तो इसको पहले अंदर रियलाइज करना है। शांति हमारा मूल गुण है, शांति हमारी निजी चीज है, शांति हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, शांति आत्मा का एक इंग्रेडिएंट है। शांति और आत्मा कभी अलग अलग नहीं हो सकते, अलग करेंगे तो वो खींच के फिर उसकी तरफ जाएगी। लेकिन हुआ क्या, शांति नहीं है ना आज, हम शांति के इच्छुक हैं ना, और उसके लिए बहुत प्रयास भी करते हैं ना। तो हुआ क्या, हुआ ये कि हम एक भूल गए, छोटी सी बात भूल गए। जैसे अभी आपके हाथ में चाबी है या मोबाइल है, कोई चीज आपके हाथ में अवश्य होगी, और आप यहाँ बाबा की बातें सुन रही हैं, आध्यात्मिक बातें सुन रही हैं। आप बातें सुनते सुनते थोड़े से बहुत ज्यादा ही खो गई, तो क्या हुआ, मोबाइल को आप यहीं भूल गए। अब आप गए अपने कमरे पे, वहां जाते ही आपको किसी को मोबाइल करना है, आपने जेब में हाथ डाला मोबाइल मिला ही नहीं, तो आपके मुंह से पहला शब्द क्या निकलेगा, अरे मेरा मोबाइल क्या हुआ, खो गया है, अरे मेरा मोबाइल ही खो गया, ये शब्द निकलेगा ना मुंह से। मोबाइल खोया या आपकी स्मृति खोई, स्मृति खोई ना, क्योंकि मोबाइल तो इतना आज्ञाकारी है, आपने उसको जहां रखा था वहीं पड़ा, वो खो ही नहीं सकता, आपका बड़ा आज्ञाकारी है। ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये हमारी बड़ी ओबीडियंट है, हम जहां रखते हैं वहीं पड़ी रहती है, ना चल के जाती हैं, ना भागती हैं, ना दौड़ती हैं, हम इतने हैं कि अपनी चीजों को भूल जाते हैं। तो हम भूल गए, मालिक भूल गया, और वो इंतजार में है कब मेरा मालिक आए मुझे उठाए। अब आप क्या करेंगे, यहां आने से पहले आप चाय पीने गए थे, यहां आने से पहले आप बगीचे में बैठे थे, तो दौड़ के जाएंगे चाय वाले स्थान पे, यहां भुलाऊंगा, फिर बगीचे वाले स्थान पे मैं यहां भुलाऊंगा, फिर याद करेंगे रास्ते में मैंने किसी को पकड़ाया तो नहीं था, कितनी बातें याद करेंगे। फिर आपके मन में ये भी आएगा, ये मेरा साथी कहीं मजाक कर रहा हो, फिर आप कहेंगे अरे भाई मजाक मत करो, मेरा तो सारा दिन का ही सेशन खराब हो जाएगा, बता दो कहीं देखा हो तो, तुम मुस्कुरा रहे हो मुझे लगता है तुमने कहीं छिपाया है। अच्छा वो नहीं बताएंगे तो अंदर में डाउट रहेगा, ये मुझे दुखी कर, यहाँ भी दुखी कर रहे हैं, वहां तो करते ही थे, यहाँ भी इन्हें अपनी आदत नहीं छोड़ी। अब देखो कहाँ कहाँ डाउट जा रहा है, किस किस पे डाउट जा रहा है, कारण क्या है, हमारी स्मृति पूरी तरह ब्लॉक हो गई, हमको ये याद नहीं है कि वहां सोफा पे रखा था। अच्छा अब आप उस मोबाइल को चाहे तीनों लोकों में ढूंढ लो, आपको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो शांति के संबंध में भी ऐसे ही हुआ, भगवान ने हमको शांति दे के भेजा था, छोटे बच्चे के पास कितनी शांति है ना, माँ बाप झगड़ रहे हैं और बच्चा मुस्कुरा रहा है, उसके ऊपर कोई असर पड़ता है, उसके पास इतनी शांति है। और चलो माँ बाप की बात छोड़ो, आपने बच्चे को डांट भी लगा दी, एक बार रोया फिर क्या हुआ, फिर मुस्कुरा पड़ा, एक सेकंड के लिए रोया, फिर मुस्कुरा पड़ा। उसको याद है क्या मम्मी ने डांट मारी थी और मैं रूठ जाऊं और मम्मी से बोलना बंद कर दूं। पानी पर लकीर गया, उसके अंदर इतनी शांति है कि वो अशांति अंदर टिकती ही नहीं। तो हम सब छोटे बच्चे थे ना, तो हमारे पास शांति थी कि नहीं थी? बहुत थी। इतनी शांति हमको भगवान ने देकर के भेजी थी। फिर क्या किया हमने, जैसे मोबाइल को रख के भूल गए ना, ऐसे उस शांति को भी रख के भूल गए। और अब क्या कर रहे हैं, उसको ढूंढते फिर रहे हैं। कभी क्लब में जाते हैं, कभी सिनेमा में जाते, पार्कों में जाते हैं, पहाड़ों पे घूमने जाते हैं और पार्टीज में जाते हैं, भाई थोड़ी शांति मिले, थोड़ी शांति के लिए आया। मिलती ही नहीं है, घर में गए फिर अशांत। कहते पार्क में बैठे थे तो बहन जी मन बड़ा शांत था, घर में आते ही अशांत हो गया। वो कहते हैं डॉक्टर की दुकान पे बैठा था तब तक तो खांसी ठीक थी और घर में आते ही फिर शुरू हो गई। तो ऐसी चाहिए ना जो घर में भी खांसी ना आए। तो क्या करना पड़ेगा, शांति को जहां रख करके भूले थे ना, वो याद करना पड़ेगा। तो भगवान हमको वो याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम कहां रख के भूले थे। शांति वही है जहां मैंने दिया था, मैंने रखा था। तो शांति किसमें है, आत्मा में है। हम आत्मा को भूले, आत्मा की शांति को भी भूल गए। आत्मा को भूल गए ना, कोई आत्मा की बात करता है तो कहते हैं पता नहीं, सुना तो है आत्मा कोई चीज होती है पर पता नहीं कैसी है, कहाँ रहती है, क्या करती है। मैं खुद आत्मा, लेकिन कहते ऐसे हैं पता नहीं क्या होता है, कोई खास जानकारी नहीं है, बस सुना तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने को ही भूल गए तो अपनी प्रॉपर्टीज को भी भूल गए और बाह्य जगत में उसको ढूंढ रहे हैं, शांति या प्रेम। प्रेम भी क्या करते हैं, दूसरों से खोजते हैं ना, मांगते हैं ना, ये मेरे को प्यार ही नहीं करता है। कोई भी संबंध हो, भाई बहन, पति पत्नी, दादा, ऐसे ही कहते हैं ना, ये मुझे प्यार ही नहीं देता। भाई पहले तुम अपने आप से प्यार करते हो, आपने अपने आप से कितने बार प्यार किया बताओ, आपको अपने आप से प्यार है? आप कितनी बार अपने को कह देते हो मैं तो बड़ा पागल हूं, ये आपको प्यार है क्या अपने आप से? जिसको जिससे प्यार हो कभी पागल कहता है दूसरे को? वो तो कहता तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत समझदार हो। तो देखो आप अपने आप को ही प्यार नहीं करते, कितनी चीजों में अपने आप से प्यार नहीं करते, बहुत बातों में अपने आप से प्यार नहीं करते। कितनी बातें गिनती करी, जिसे प्यार होता है उसको कहते हैं तुम बैठ के पढ़ो, टाइम खराब मत करो। कभी अपने आप को ऐसे प्यार से कहते हैं क्या कि थोड़ा टाइम खराब मत करो? अपने आप से कभी ऐसे प्यार किया, टाइम खराब करना माना जीवन खराब करना? नहीं, ये बात दूसरों को तो कहते हैं, अपने को तो कभी नहीं कहते। तो कहाँ है अपने आप से प्यार, अपने लिए कभी टाइम निकाला? दूसरा आदमी कहता है मेरे को तेरे से मिलना है, तो कहते हैं आ जाना 10 बजे फ्री हूँ, आधे घंटे मिल लूंगा। कभी आपने अपने लिए आधा घंटा निकाला, अपना हालचाल पूछा कभी, भाई तुम राजी खुशी हो, तुमको क्या चाहिए, क्या तकलीफ है, अपने से बात की कभी आपने? तो आपका अपने से प्यार नहीं, आप अपने को टाइम नहीं देते, अपना हालचाल नहीं पूछते, तो फिर लोग आपसे प्यार कैसे करेंगे? प्यार की शुरुआत तो अपने आप से होती है ना। इसलिए आज दुनिया में सबको एक ही शिकायत है, क्या हमें कोई प्यार नहीं करता? क्योंकि हम सब बाहर खोजने लग गए, दूसरों से खोजने लग गए, अपने भीतर वाले को ढूंढा ही नहीं भीतर। तो जितने भी गुण हैं, शांति है, प्रेम है, पवित्रता है, कुछ भी है, उसकी शुरुआत अंदर से है। आत्मा का ज्ञान मिलते ही इन गुणों का इमर्ज होना शुरू हो जाता है और इन गुणों को साथ लेके जब हम कर्म करते हैं तो वो दूसरों के लिए उदाहरण मुहूर्त बन जाता है। और फिर इन गुणों को लेके जब हम कर्म करते हैं तो हर व्यक्ति गुणों को लेके कर्म कर रहा है तो क्या होगा, ऑटोमेटिक मूल्यों का प्रचार प्रसार सब जगह हो जाएगा। तो ये एजुकेशन का मिसिंग लिंक है, ये हम यहाँ पे सीखेंगे, अपने भीतर की प्रॉपर्टीज को बाहर निकाल करके उन्हें समाज कल्याण में लगाएंगे। बाहर से हमें कोई रिसोर्सेज नहीं ईजाद नहीं करने, लेकिन जो इनर रिसोर्सेज नेग्लेक्टेड उनको हमें काम में लगाना है। आप यहाँ आए, हम सबको बहुत खुशी हुई, इतने बड़े परिवार को देख के हमें बहुत अच्छा लगा। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे भाई बहन हैं, ये आपका अपना घर है, आप अपने घर में आए हैं। तो हम क्या चाहेंगे, हम यही चाहेंगे कि यहाँ जो सेशन हो उनसे आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिले। जितना पैसा आप खर्च करके आए हैं कम से कम उतना तो फ़ायदा आपको मिले, और जितना समय आप लगा करके आए हैं उतना तो फ़ायदा मिले। तो कोई भी क्लास आप मिस नहीं करना, हर प्रोग्राम में आप बहुत खुशी उमंग से बैठना, और पीछे की कोई बात याद भी आए तो उसको थोड़ी देर लेट गो कर देना, अभी तो आपको अंदर नई नई बातें भरनी हैं। तो जितनी लगन और उमंग से सीखेंगे ना तो सीखा हुआ भी दुगना तिगना याद हो जाता है। तो हमारी शुभ भावना है कि आप यहाँ से इतने मूल्य लेके जाएं कि आपके जीवन की सब समस्याएं खत्म हो जाएं। खत्म क्या हो जाएं, आप दूसरों की समस्याएं भी खत्म करने के निमित्त बन जाएं। ओम शांति।
समाज की
धर्मनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज, न्यायनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज।
समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की।
समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। समाज की
धर्मनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज, न्यायनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज।